वाणी में एक दोहा आता है, सिद्ध मुन नित गाव दे प्रभ का गुण अगाध, सिमरन नाम जग सार है मिटावे मन अपराध। सिद्ध मुन नित गाव दे प्रभ का गुण अगाध, सिमरन नाम जग सार है मिटावे मन अपराध। इस जगत में आकर जो सार जीवन है, अर्थात जिसके बिना जीवन का कोई सार ही नहीं, वो कहते हैं कि सिमरन नाम जग सार है। प्रभु का सिमरन ही मनुष्य जन की सार है, संसार में आने की सार है। क्यों? मिटावे मन अपराध। सिमरन ही वो मेडिसिन है, वो दवा है मन के अपराध मिटाने की। अब ये बात जरा कठिनाई से समझ में आती है कि मन के अपराध क्या होते हैं। हम सब जानते हैं कि मन में केवल हम संकल्प उठते हैं, जो सिमरन करते हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है कि हम इच्छा करके बैठते हैं कि मैंने मंत्र का जाप करना है, प्रभु के नाम का जाप करना है, और एक घंटे के लिए बैठे, कोई आधे घंटे के लिए बैठा, एक ही समस्या हमारे सामने आती है कि मन के अंदर मंत्र कम याद आता है, प्रभु कम याद आते हैं, संसार के संकल्प ज्यादा याद आते हैं। जैसे समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो लगातार लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार मेरे मन की भी स्थिति मुझको पता लगती है कि संसार के संकल्प तो पीछा छोड़ ही नहीं रहे। बड़ा प्रयास करके, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर तो मैं प्रभु की याद करने बैठा, लेकिन ऑटोमेटिकली मन के अंदर संसार की याद आ रही है, संसार के संकल्प आ रहे हैं। और ये संकल्प होते कौन से हैं? एक आम व्यक्ति का आप देखिए कि उसका जो सांसारिक जीवन है, जैसा कि हम अभी भी सुन रहे थे, वो संसार के भोगों की तरफ अट्रैक्ट करता है, और संसार के भोगों की तरफ या संसार के सुख की ओर जो हमारा अट्रैक्शन है, जो खिंचाव है, उसको अध्यात्म विद्या कह रही है कि ये पांच विकार के अंतर्गत आता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पूरा का पूरा सांसारिक जीवन इन पांच विकार की उपज है। ये ऐसा विज्ञान है जिसको हमको सीखना ही चाहिए। पूरा का पूरा सांसारिक जीवन जिसको हम सुख की प्राप्ति कहते हैं, सुख के लिए जीना कहते हैं, वो केवल पांच विकार की उपज है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसको हम पांच ज्ञानेंद्रियों के रूप में जो सुख भोगते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये जितना भी ये बाहर का संसार है, जब हमने इसी के लिए व्यतीत किया है, इस सुख प्राप्ति के लिए हम जीते रहे हैं, तो आपके मन में ये पांच विकार के ही तो संस्कार बनेंगे। जो भी क्रिया हम करते हैं उसका जो इम्प्रेशन है, उसका जो इफेक्ट है, उसको हम संस्कार कह देते हैं। तो मन के अंदर सारे के सारे संस्कार, जन्म से लेकर आज तक संसार के सुख प्राप्ति के लिए जो हम जीते हैं, उसी के संस्कार बनते हैं। तो जब आप प्रभु की याद करने बैठोगे तो स्वाभाविक रूप में उन संस्कारों से संकल्प उदय होते हैं। जैसे कि समुद्र के किनारे खड़े होने पर पता लगता है कि स्वाभाविक रूप में जल के अंदर तरंग पैदा होती है, कोई पैदा करता नहीं है उसको। तो जैसे जल का स्वभाव ही है तरंग पैदा करना, उसी प्रकार मन का स्वभाव ही है मन के अंदर संकल्प काटना। और वो संकल्प कौन से होते हैं? जो हमने संसार के भोग विलास किए हैं, जिसको उसका जो इम्प्रेशन है, उसका जो इफेक्ट है, वो उसको संस्कार कहते हैं। उन संस्कारों के अनुसार मन के अंदर संकल्प उदय होते, और ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, किसी भी प्रयास से आप इसको रोक नहीं सकते। तो अब बताइए कि मैं जब प्रभु की याद करने बैठा हूं और मन के अंदर संसार के संकल्प उदय हो रहे हैं। तब इन संस्कारों को आप कोशिश करते हो कि किसी प्रकार से रुक जाए और मंत्र अंदर चलता रहे, प्रभु की याद चलती रहे, लेकिन दसियों वर्ष प्रयास करने के पश्चात भी उनका वेग तो कम होता है लेकिन उनका उठना बंद नहीं होता, क्योंकि ये संकल्प संसारी सुखों के हैं, संसारी चिंता फिक्र के हैं, संसारी कामों के हैं। इसीलिए ये पांच विकार के अंतर्गत आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्योंकि ये विकार हैं, ये पांच तरह की डिजीज है जो हमारे मन को चिपटी हुई है। इसीलिए इसको कहा गया मिटावे मन अपराध। जो विकार के संकल्प आते मन में उदय हो रहे हैं तो अपराधी तो है, इसलिए मनुष्य जन्म लेकर प्रभु की याद के संकल्प आना चाहिए थे, किसी निष्काम सेवा के संकल्प आना चाहिए थे, लेकिन भोग विलास के सुखों के काम बनने के बिगड़ने के ये संकल्प आ रहे हैं। तो इसीलिए जब तक बुद्धि का निर्णय नहीं बदलता, हमारी जो सांसारिक बुद्धि है जब तक ये सतबुद्धि में नहीं बदलती, तब तक आप ईश्वर को महत्व क्यों दोगे? बड़ी मुश्किल से समय निकाल भी लिया तब भी आप देखते हैं कि फिर भी चिंता यही लगी रहती है, ये समय मैंने घंटा निकाल तो लिया ईश्वर को देने के लिए, अब पता नहीं मेरे संसार के काम कैसे पूरे हो। तो अंदर जो आपके अंदर ये एक स्वाभाविक इच्छा है या स्वाभाविक मन की जो डायरेक्शन है वो संसार में सफलता की ही है, ईश्वर मार्ग में सफलता की वो डायरेक्शन हमारी बुद्धि की बन ही नहीं पाती। वो कोई कोई विरला होता है जो बड़ा ही गहरा प्रयास करता है सतमार्ग को समझने का, शास्त्रों को समझने का, तब जाके उसकी बुद्धि का ये निर्णय होता है कि भाई संसार में तो जब मैंने विकारों की कमाई करनी है जिसको हम सुख करके देखते हैं, फिर तो मेरा जन्म फेल होना ही होना है। तो जब शास्त्र पढ़ते पढ़ते सत्संग श्रवण करते करते बुद्धि का जब निर्णय किसी की बदलता है, तब वास्तव में वो दिल से प्रयास करता है कि संसार में केवल काम चला लूं मैं, भाई भूख लगेगी तो खाना तो खाओगे, कपड़े पहनोगे, कहीं किसी स्थान पे रहोगे भी, तो जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, बेसिक जरूरत है, उसके लिए तो आपको पैसा भी चाहिए, साधन भी चाहिए, उसको कोई सब कुछ कमाने को या इकट्ठे करने को मना तो नहीं करता। वो तो उसके लिए जीवन व्यतीत आप जो करते हैं लक्ष्य बनाकर संसारी सुखी जीवन अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, और समाज में भी वही ख्वाब देखते हैं कि सब सुखी हो जाए। तो ये जो हमने लक्ष्य बना रखा है सुखी होने का, वो कहते हैं ये गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि तू अपने आप को देह समझ रहा है जो कि तू है नहीं। देह तेरी जरूर है लेकिन तू देह है नहीं। इसीलिए सारा ज्ञान किसके लिए है? देह के लिए तो नहीं, सारा ज्ञान बुद्धि के लिए। बुद्धि ही देह के बारे में जानती है, बुद्धि ही संसार के बारे में जानती है, बुद्धि ही सुख के बारे में जानती है, बुद्धि ही विकार के बारे में जानती है। ये पांच विकार महादुखदाई जले सकल संसार, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। वाणी किसके लिए आई है? ये बुद्धि के लिए ही तो आई है। तो पांच विकार महादुखदाई है, इसमें सारा संसार जल रहा है और मैं ख्वाब क्या देख रहा हूं अपने लिए अपने बच्चों के लिए कि पैसा मिल जाए, साजो सामान मिल जाए, मैं सुख भोगूं, बच्चे ही मेरे सुख भोगे। तो आप सोचने के लिए आजाद हो, सोच सकते हो, लेकिन बुद्धि का निर्णय तो आपका पूरा 100% गलत है। जो आप हो ही नहीं वो अपने आप पर समझ रखा है, तो फिर आप कितना भी सत्संग सुनते रहो सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने के बाद जब तक उस पर खुद मनन नहीं करोगे, बार बार नहीं सोचोगे, आप कल्पना नहीं कर सकते, एक ही बात को हजारों बार सोचना पड़ता, एक दो बार के बजाय हजारों बार सोचना पड़ता, तब भी बुद्धि का निर्णय आसानी से बदलता नहीं। इसीलिए सत्पुरुषों ने उसका नाम रखा मनन प्रक्रिया। मनन का मतलब होता है जैसे संसार का मनन हर समय चलता रहता है, जान का समय डिसाइड करके संसार का मनन नहीं करते आप, 24 घंटे संसार का मनन चलता रहता है, यहां तक कि जब सो जाते हो तब स्वप्न में भी संसार का मनन चलता रहता है, तो ये मनन प्रक्रिया ये आपका कंटिन्यूअस जीवन बन जाती है। अब विचार करो, जब बुद्धि इस प्रकार से सोचती है, सत्पुरुषों की बात हो, गुरु कह रहा है कि बुद्धि का निर्णय आसानी से संसार से विरक्ति का नहीं बनता। संसार में राग बुद्धि का बना ही रहता है, लेकिन जब ये शास्त्रों को खुद पढ़ते हो, एक एक दोहे पर, एक एक लाइन पर, एक एक पैराग्राफ पर, जब बार बार गहराई से सोचते हो, जब वो कह रहे हैं कि भाई शरीर मर जाता है, जीव बच जाता है, तो जब जो बच गया जो मर गया ये दो अलग चीजें हो गई नहीं हो गई? लेकिन विचार करो, क्या मैं कभी सोचता हूं पूरे दिन में भी एक बार भी मेरे दिमाग में ये बात आती है, शरीर मर जाता है मैं बच जाता हूं? आप जनरल तरीके से सोचते देख लो, क्या दिन में एक बार भी ये बात सोचते हो? पता लगे नहीं सोचता हूं। सत्य मेरे बारे में यही, क्योंकि जिस चीज में भी चेतना है, जिसमें चेतना है, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसकी मृत्यु नहीं होती है। और जो जड़ है वो हमेशा बनता बिगड़ता है, तो शरीर जड़ है, वो बनता रहता है बिगड़ता रहता है, मर जाता है पैदा होता रहता है। किसका शरीर है? ये मेरा शरीर। तो गलती का गलती बड़ी छोटी सी है कि शरीर मेरा है, गलती क्या करता हूं, मैं शरीर हूं, बस इतनी सी गलती। केवल इतनी छोटी सी गलती है कि शरीर मेरा है, ये बात ठीक है, मैं शरीर हूं ये गलत। तभी आप नाम रख रहे हो शरीर का, फिर नाम कमाने की कोशिश करते हो, जो नाशवान चीज है उसका नाम क्या कमाओगे तुम? जो पता है नष्ट हो जाएगी और परमानेंट नष्ट हो जाएगी, उसका नाम कैसे कमा सकते हो आप? इसका मतलब ये नाम कमाने की इच्छा है तो बुद्धि में पक्का भ्रम है कि मैं देह। तो अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को सिमरन में सफलता कैसे मिल सकती है? मिल ही नहीं सकती। तो जब तक विवेक बुद्धि में नहीं है, तब तक सिमरन में सफलता के लिए बड़ा लंबा टाइम लगेगा। यदि बुद्धि में विवेक है तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए आप संत अभिलाष पढ़ लो, ये वाणी पढ़ लो, गीता पढ़ लो, हर जगह आपके अहंकार को ही तोड़ा जा रहा है, आपके कर्तापन को ही तोड़ा जा रहा है। क्योंकि मैंने जब समझ ही लिया कि मैं शरीर हूं, तो कर्म तो सारे सारे शरीर से होते हैं, तो आपका ये वहम जाता ही नहीं कि कर्ता ईश्वर है या कि मैं। आप यदि बच गए, जीव यदि बच गया, देह यदि इसकी मर गई, तो जो बच गया उसको नई देह मिल जाती। सारे शास्त्र यही बात कर रहे हैं, महाराज जी भी कह रहे हैं। प्रेमी जब पूछा गया, महाराज जी वर्तमान शरीर जब खत्म होता है, अब नया शरीर जब मिलता है, बीच में कोई क्या टाइम गैप होता है, समय का अंतर होता है? नहीं प्रेमी, चांस की बात है। उस समय महाराज जी सामने जोंक चल रही थी, तो महाजी उस जोंक को दिखा के प्रेमी को उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ये जोंक अगला अपना स्टेप रखती है, मुंह जमा लेती है, फिर पीछे से पूंछ उठाती है, अर्थात आगे बढ़ती है। उसी प्रकार जिस समय मौत आती है, नई देह उसी समय निश्चित हो चुकी होती है। तो जैसे ही ये जीव वर्तमान देह को छोड़ता है, नई देह उसको मिल जाती है। साइज चाहे कितना बड़ा हो उसका, चाहे कितना छोटा हो, लेकिन जीव को नई देह तुरंत ही मिल जाती। अब बताइए, जिसकी मौत ही नहीं है, जो जिंदा वस्तु है वो तो मैं हूं। शरीर मैटीरियल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच तत्व का ही तो शरीर है, ये तो मैटीरियल है। तो ईश्वर भी मैटीरियल नहीं है, जीव भी मैटीरियल नहीं है, देह और संसार मैटीरियल है। तो यदि मैं अपने ही विज्ञान के अनुसार सोचूं, जो सरल विज्ञान है, बहुत कठिन नहीं है, और ये विज्ञान पर विश्वास कब करोगे आप? जब आपका गुरु पर विश्वास हो, किसी अवतार पर विश्वास हो, नहीं तो कहां से विश्वास आएगा आपके अंदर? पहले लोगे तो विश्वास ही नहीं आएगा। तो अवतार का जीवन या गुरु का जीवन ऐसा होता है जो ये सिद्ध कर देता है कि ये देह नहीं है। जैसे महाराज जी का शरीर है, महाराज जी का जीवन है, हम जानते हैं। निखेत पर्वत गोष्ठ जो है वाणी के अंदर, वहां वाणी आ रही है और भगत जी लिख रहे हैं। अब बताइए, अगले दिन जब करेक्शन करते थे, कोई शब्द लिखने से रह गया, तब महाराज जी को भी एक एक मिनट, दो दो मिनट लग जाते थे कि सही शब्द क्या यहां पर फिट होगा। तब भगत जी ने पूछा एक दिन, महाराज जी आप उस समय वाणी आती है बिल्कुल एक नदी की धारा की तरह से लगातार चली आती है, लेकिन जब आप करेक्शन कराते हैं तब आपको एक एक मिनट, दो दो मिनट भी लग जाते हैं कई बार। तब महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी यहां बुद्धि से काम लिया जा रहा है, और जब वाणी आ रही है वो सीधी ईश्वर की आवाज है, इनकी बुद्धि का दखल नहीं है वहां। तो जब हम गुरु की ये बात पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब हमारी बुद्धि ये मजबूर हो जाती है सोचने के लिए कि इस देह के अंदर मैं अर्थात बुद्धि के अलावा भी एक और सत्ता भी तो है, मेरे अंदर चेतना है मैं जानता हूं, लेकिन ईश्वर भी तो है इसके अंदर, वो भी जानता है, उसमें भी चेतना है, वो तो चेतना का रूप ही है। अब वहां से वाणी आ रही है, बिल्कुल करेक्ट आ रही है, और जैसी मेरी है, जैसी संसार की जरूरत है वहां के लोगों की, उसके अनुसार आ रही है, उनकी भाषा में आ रही है, तो क्या ईश्वर नहीं है? महाराज के शरीर से क्या ईश्वर दिखाई पड़ रहा है आपको? ईश्वर तो दिखाई नहीं पड़ रहा, उनका शरीर भी पांच तत्व का है, मेरा शरीर भी पांच तत्व का है, उनका भी शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया, मेरा भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, सभी का शरीर मर जाता है। लेकिन महाराज जी अपने बचपन के बारे में खुद ही कह रहे हैं एक दिन कि प्रेमी जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पूरा बोध था कि संसार क्या है, करतार क्या है, और जीवनी में पढ़ते ही हम कि 3 वर्ष की आयु थी तो रात में आंख बंद करके चारपाई में बैठे रहते थे, मां कहती थी मंगत सोता क्यों नहीं है, मां सो जाऊंगा, लेट जाते थे फिर बैठ जाते। तो बचपन से गुरु के जीवन की जब ये बात पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या मेरे अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए? महाजन तो कोई साधारण नहीं थी, अभी पूरे जन्म से लेकर ही तो आया अपनी कलाई को, शरीर का जला दिया गया पूरे जन्म में, तो ये कौन है जिसके अंदर संस्कार सुरक्षित है, जो सब कुछ जानता है, ईश्वर का प्रेम बचपन से ही है? क्योंकि जिसने पूर्व जन्म में प्रभु प्रेम की कमाई की वो प्रेम उसका सुरक्षित है, तो ये कहां सुरक्षित रहता है? शरीर तो जल गया उनका, इसी का नाम बुद्धि है। बुद्धि में ही वो सारे सारा जो स्वभाव है, सारा कर्म फल है, जो कुछ भी कर्म किए वो सुरक्षित रहता है। इसको गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन को कहा तू योगी बन, योगी का मतलब ईश्वर की खोज कर। अब अर्जुन जानता है कि मेहनत करी ही मैंने और बीच में डेथ हो गई तो सब तो निरर्थक तो नहीं चला जाएगा कहीं, मेरा इस जन्म में ईश्वर मिला नहीं और मैंने इतनी मेहनत करी फिर बीच में शरीर छूट गया, फिर निरर्थक तो नहीं चला जाएगा? तब कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं अर्जुन, जो कुछ भी कमाई की है तूने वो मैं सुरक्षित ऐसी एज इट इज प्रदान कर दूंगा तुझे, जैसे ही नया शरीर तेरा बनेगा वैसे ही ये सुरक्षित ऐसे ही मिल जाएगा, और जो कसर रह गई उसके लिए साधन प्रदान करूंगा। अब बताइए, प्रभु जो अगले जन्म की भी गारंटी ले रहे हैं, तो महाराज जी जब लिखित रूप में ये बात कह रहे हैं वाणी में या समता विलास में या वार्तालाप में, तो क्या मेरी बुद्धि को यह विचार नहीं करना चाहिए कि जब मैं मरूंगा ही नहीं तो मैं हूं कौन? जब मेरा यह बुखार उतरता ही नहीं कि मैं देह हूं, ये बुखार चढ़ गया मेरे, और दिन में पूरी दिन की प्रक्रिया चली जाती है, प्रक्रिया आपकी बीती है, एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं कौन। तो इसीलिए अध्यात्म में ज्ञान ज्यादा नहीं सिखाया जाता है, मनन ज्यादा किया जाता है, जो मैं नहीं करता। इसीलिए बड़े बड़े अक्षर अच्छे सत्संग करने वाले, बड़े बड़े अच्छे स्टडी करने वाले, बड़े बड़े विद्वान बनने वाले खुद अपने बारे में मात खा जाते, उनको समझ ही नहीं आती। नहीं तो ये नकली गुरु इतने सारे क्यों फिरते हैं, ये इनको बड़े शास्त्र भी रटे हुए हैं, बड़े सत्संग भी करते हैं, कि जानते नहीं, कि जानते हैं ये, लेकिन शायद दिन में एक बार भी अपने बारे में मनन नहीं करते होंगे। ये तो पाखंडी गुरु कैसे बन जाते हैं, अंदर से कुछ और है, दिखाते कुछ और। क्यों, इंद्रिय भोग चाहिए उनको बस, और क्या चाहिए उनको, भय ही नहीं है, होश ही नहीं है कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं किसको मूर्ख बना रहा हूं, मैं मूर्ख बना नहीं रहा हूं, मैं मूर्ख बन रहा हूं। इसीलिए अध्यात्म विद्या गहरी जरूर है, क्योंकि इतनी कठिन नहीं है, ये सरल हो जाती है यदि मैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं अध्यात्म कर, उस पर ध्यान दूं और ये बुद्धि में निश्चय करूं कि जब ये मेरे बारे में सत्य है तो क्या मुझको इसके अनुसार नहीं सोचना चाहिए। तो जब आप खुद मनन करोगे, बार बार मनन करोगे, तब आपके अंदर एक दिन आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर ये विश्वास पक्का हो गया है कि वास्तव में मैं देह हूं और देह के साथ मन भी मेरा ही है, वो भी उसी प्रकार सूक्ष्म है जिस प्रकार की मैं सूक्ष्म हूं, लेकिन मन के अंदर चेतना नहीं है, मेरे अंदर चेतना है, मन के अंदर जो कुछ भी क्रिया की है उसके संस्कार मौजूद है। तो सिमरन कौन करता है, सिमरन मन नहीं करता, सिमरन बुद्धि करती है, मन को उसमें लगाती है, और जब लगाती है तो मन के अंदर स्वाभाविक रूप में जैसे पानी में तरंग उठती है ऐसे मन में संकल्प उठते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सिमरन की प्रक्रिया चलती है वो संकल्प धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। कैसे नष्ट होते हैं, क्योंकि ये जो सिमरन की प्रक्रिया है या सिमरन की जो क्रिया है ये नए संकल्प नए संस्कार बना लेती है, तो इसीलिए वो संस्कार या तो दब जाते हैं या वो मिट जाते हैं धीरे धीरे करके। और ये नए जो संस्कार है प्रभु भक्ति के, प्रभु के सिमरन के, ये अपना घर बना लेते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं, फिर आपका मन सिमरन में लगने लगता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में सफलता तभी मिलेगी जब विवेक आपका कायम रहे। विवेक यदि आपका मिस हो गया तो फिर 20 साल के सिमरन करते रहोगे, शिकायत करते रहोगे। इसीलिए विवेक से वैराग्य पैदा होता है। महाजी कहते हैं प्रेमी विवेक क्यों चाहिए बुद्धि के अंदर, कि विवेक से संसार का राग टूटता है, भोगों का राग टूटता है, नानक दुखिया कुल संसार, ये बुद्धि के अंदर निश्चय आता है। पांच विकार महादुखदाई जले सकल संसार, जब वाणी कह रही है सारा संसार जलना है, मैं भी तो जलता रहता हूं, बेचैन होता रहता हूं। एक बालक को देखो ना कितना रोता है, उसमें विवेक है ही नहीं, जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, नहीं पूरी होती तो रोता है। तो बालक जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ वो कितना रोता है, कितना परेशान होता है, बिना बातों में माँ बाप को ही परेशान करता है, जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसको जीवन देते हैं उनको भी परेशान करता है अज्ञानता के कारण। यही मेरी हालत है, समाज में भ्रष्टाचार फैला के, लोगों को मूर्ख बना के मैं कितने पाप करता हूं, लेकिन होश ही नहीं है, जान कर पाप करता हूं। इसीलिए जब तक मैं मनन प्रोसेस से नहीं निकल गुजरता तब तक सारा अध्यात्म सुनने के पश्चात भी मेरी बुद्धि का वास्तव में कोई विकास नहीं हो। कैसे है, तो बुद्धि है तो जीव जिसकी मृत्यु नहीं है, बन गया तो शरीर, शरीर बन के तो सत्संग भी सुन रहा है, शरीर बन के तो सिमरन कर रहा है, शरीर बन के तो संसार का जीवन व्यतीत कर रहा है। तो बता कि तेरा ये जो अज्ञान है ये सारा किस कारण से है, ये मोह के कारण है, कि मैं देह हूं ये गहरा मोह है मेरा। तो शरीर से प्रेम हो जाता है, ईश्वर से प्रेम हो ही नहीं पाता, बड़ी कोशिश करता हूं तब भी नहीं होता। तो इसीलिए विवेक जरूरी है, अपने बारे में सही समझ जरूरी है, इसलिए इस पर मेहनत करें। लंबा चौड़ा ज्यादा ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है, जिनकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है, जो शास्त्र को खुद पढ़ सके, गहराई से समझ सके, लेकिन मनन तो वो कर सकते हैं, अपने समझ को तो करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो वाणी कह रही है कि सिद्ध मुन नित गाव दे प्रभु का गुण अगाध, सिमरन नाम जग सार है मिटावे मन अपराध। कैसे अपराध मिटता है? ये तेरे मन के संकल्पों को धीरे धीरे इरेज कर देता है। कब करेगा इरेज? जब बुद्धि के अंदर विवेक तेरा कायम रहेगा तभी। इसीलिए मन और बुद्धि ये दोनों की साधना होती है, दोनों का यह मानव जन्म का व्यापार है। जब बुद्धि में ईश्वर का निश्चय पक्का हो जाता है और ये समझ पक्की हो जाती है कि मैं जीव हूं जिसकी मौत नहीं, ये देह मेरी है मैं देह नहीं, इसीलिए देह का अहंकार बढ़ाने की मुझे कभी कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। ये कौन करेगा? जिसकी बुद्धि में विवेक, नहीं तो बढ़ाएगा अहंकार, सुंदर कपड़े पहन के दिखाएगा, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करके सुनाएगा और अहंकार बढ़ा लेगा अपना। यही मन मेरा शुद्ध हो जाता है सिमरन के द्वारा, इस स्थिति में जब बुद्धि के अंदर विवेक मेरा बना रहता है, उस हालत में सारे मन के अपराध अर्थात मन के जितने भी उल्टे सीधे संकल्प हैं, बिगड़े हुए संस्कार हैं, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाते हैं और ये संकल्प जो है सत्संकल्प में बदल जाते हैं और जो संस्कार हैं ये धीरे धीरे सतोगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तब जाकर पता लगता है कि प्रभु के नाम में क्या रस है, क्या आनंद है। संसार की कोई भी वस्तु उस आनंद को नहीं दे सकती जो केवल नाम का सिमरन आपको दे सकता है। लेकिन उस निश्चय के साथ कि मैं वास्तव में बुद्धि हूं या जीव हूं जिसमें चेतना है जो जानता है, और इस शरीर में कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो जानती है। तो इसीलिए किसको जानता है ये? किसको जानना चाहिए? ईश्वर को जानना चाहिए, क्योंकि इस देह का मालिक, इस देह की जान, इस देह की चेतना ईश्वर से आई है, इसलिए वो प्रभु इस देह को छोड़ ही नहीं सकते। तो जब तक प्रभु का कृपा इस देह को, प्रभु की कृपा इस देह को मिल रही है, तब तक ये जीवित है। तो वो जो प्रभु मेरा जीवन है उसकी याद करूं या जो ये मेटेरियल का संसार है इसको याद करूं? तो विवेक के द्वारा आपके अंदर जब वैराग्य आता है अर्थात संसार के सुखों का राग टूटता है, तब दिल से ईश्वर की याद आती है, तब जाके पता लगता है कि मेरा मन उस सिमरन में कैसे लगता है और कैसे निर्मल लगता है। संसार की याद नहीं सताती, संसार का महत्व नहीं सताता, महत्व मेरे लिए जीवन में ईश्वर का हो जाता है, उसके लिए जीता हूं, उसकी याद करता हूं। ओम नमः शिवाय।